यह आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुधवार से राजधानी में पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में कल हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल मंगलवार को रात्रि 12 बजे से सुबह 11 बजे तक किया जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम ने इसको लेकर मार्ग परिवर्तन परामर्श जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। इसके जवाब में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ईमेल अनुरोध की जांच के बाद सुनवाई के लिए एक तिथि की घोषणा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत की मंजूरी दी थी। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया था। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के मामले में कोई विद्वेष की भावना नहीं थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फर्जी पहचान मामले में पूर्व प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वीकृति दी है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई तक उन्हें हिरासत में नहीं लेने का निर्देश दिया है। खेडकर संघ लोक सेवा आयोग के आवेदन में गलत तथ्य देने की आरोपी हैं। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उनकी तत्काल हिरासत क्यों आवश्यक है। इससे पहले 1 अगस्त को जिला अदालत ने यूपीएससी की शिकायत पर पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के बाद खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पूजा खेडकर यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सुविधा गलत तरीके से लेने की आरोपी हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुधवार से राजधानी में पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो सरकार के जनहित में किए गए कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। श्री सिसोदिया ने कहा कि जनता को पता चल गया है कि दिल्ली सरकार के कामों को भाजपा रोकने का काम कर रही है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी मजबूत हो रही है। वहीं दिल्ली भाजपा ने इस पदयात्रा पर निशाना साधा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि श्री सिसोदिया अपने विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक कर उनको चुनाव के लिए सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री सिसोदिया जब पदयात्रा के दौरान लोगों के बीच जाएंगे तब उन्हें सरकार के घोटालों के बारे में भी जनता को बताना चाहिए। इसके अलावा इस मानसून में जल जमाव और बिजली करंट से अब तक शहर में हुई 32 लोगों की मौत के बारे में भी श्री सिसोदिया को जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज एक बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी इमरान हुसैन और पार्टी के सभी विधायक शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने आज भारतीय शेयर बाजार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस को आरोपी ठहराया है। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरे शेयर बाजार को गिराना और छोटे निवेशकों के पूंजी निवेश को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विदेश के संस्थागत निवेशकों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकना चाहती है। हिंडनबर्ग पर प्रश्न उठाते हुए श्री प्रसाद ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस का हिंडनबर्ग में निवेश है, जो नियमित रूप से भारत के विरूद्व प्रचार करता है।
जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजिशन। ये है इनकी सोच।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और सीबीआई प्रमुख पर लगे आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंडनबर्ग ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर सीबीआई सिलसिलेवार जवाब कब देगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशीली दवाओं के दुरूपयोग के खिलाफ एक सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार ने आज नई दिल्ली में शपथ दिलाई। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र। अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि अब तक 11 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं।
हमारे देश के सभी जिले इस नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन गए और अभी तक लगभग 3.55 करोड़ युवा और 2.35 करोड़ महिलाएं, 3.4 लाख शैक्षणिक संस्थाएं और 11 करोड़ से ज्यादा लोग इस अभियान का हिस्सा अभी तक बन चुके हैं। जिस तरह से नशे के कारोबारी शैक्षणिक संस्थाओं को अपना केंद्र बना रहे हैं, सरकार तत्परता से कदम उठा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्रालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के छात्रों और संकायों सहित देशभर से 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल दिल्ली के भारत मंडपम से एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बाइक रैली में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी हिस्सा लेंगे। बाइक रैली सुबह 8 बजे भारत मंडपम से शुरू होगी और मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम पर सम्पन्न होगी। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर harghartiranga.com पर अपलोड करने का आग्रह किया है। अभिनेता आर माधवन ने नागरिकों से अपने घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी सरकार द्वारा एक अभिनय चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा। तिरंगा हम सभी के लिए गौरव और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम DTC ने शहर से मार्ग परिवर्तन को लेकर परामर्श जारी किया है। परामर्श में DTC ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल मंगलवार को रात्रि 12 बजे से सुबह 11 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान लाल किले के आसपास के विभिन्न मार्गों पर बसों का संचालन स्वतंत्रता समारोह सम्पन्न होने तक प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित मार्गों में लोथियन रोड छत्ता रेल से कश्मीरी गेट, सुभाष मार्ग छत्ता रेल से दिल्ली गेट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग विकास मार्ग पर दिल्ली सचिवालय लूप तक, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर फिरोजशाह रोड से सी हेक्सागन मार्ग तक, अशोका रोड पर विंडर्स प्लेस से सी हेक्सागन मार्ग तक और जमुना बाजार रिंग रोड से जाट फौजी धर्मताला तक शामिल है। बस मार्गों के परिवर्तन और अन्य जानकारी के लिए DTC के कंट्रोल रूम के नंबरों 011-4140-0400 और 1800-11-8181 पर संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में अवैध चाइनीज मांझी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेच रहे 2 लोगों को गांधीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 30 से अधिक चाइनीज मांझे की चरखी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें और पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने व्यापार और कर विभाग में फर्जी GST रिफंड के एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने फर्जी फर्म चलाने वाले 3 अधिवक्ता, 2 ट्रांसपोर्टर और 1 फर्जी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। शाखा ने बताया है कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से इन सभी ने लगभग 54 करोड़ रूपये का जीएसटी रिफंड प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज जारी की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ 2024 की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने दूसरा और जामिया मिलिया इस्लामिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं इस श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने छठा स्थान हासिल किया है। एनआईआरएफ की समस्त श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली को चौथा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली को सातवां, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दसवां और जामिया मिलिया इस्लामिया को तेरहवां और दिल्ली विश्वविद्यालय को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने चिकित्सा श्रेणी के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं। नई दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हथकरघा कारीगरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे नए डिजाइन पेश कर सकें। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक परिवार काम कर रहे हैं।
पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ का अनऑर्गेनाइज सेल हो रहा है। अब इन्हें हम अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कपड़े की ओर ले जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उन ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का 90% हिस्सेदारी भारत में।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्होंने कारीगरों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए और सभी से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने बताया है कि सीवर मरम्मत कार्य के कारण अशोका रोड पर जसवंत सिंह गोल चक्कर से विंडसर प्लेस गोल चक्कर के बीच एक तरफ का मार्ग यातायात के लिए 10 सितंबर तक बंद रहेगा। एनडीएमसी ने सी हेक्सागन इंडिया गेट से विंडसर प्लेस की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे कस्तूरबा गांधी मार्ग का उपयोग करें। आज विश्व हाथी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हाथियों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रतिबद्धता दोहराई है कि हाथियों को एक अनुकूल आवास मिले जहां वे आराम से रह सके। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भारत में एशियाई हाथियों का लगभग 60% हिस्सा मौजूद है। श्री मोदी ने पिछले 8 वर्षों में हाथियों की संख्या में वृद्धि पर खुशी व्यक्त की और हाथियों की रक्षा करने वाले सभी लोगों की भी सराहना की। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की मौजूदा दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 अगस्त 2012 को विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई थी। हाथी को दुनिया भर के लोगों और संस्कृतियों द्वारा प्यार और सम्मान दिया जाता है। अवैध शिकार में वृद्धि, आवास में कमी, मानव हाथी संघर्ष और कैद में दुर्व्यवहार हाथियों के लिए खतरे हैं। जंगली हाथियों की सुरक्षा की दिशा में काम करना, अवैध शिकार और हाथी दांत के व्यापार को रोकना, हाथियों के आवासों का संरक्षण, बंदी हाथियों के लिए बेहतर उपचार की आवश्यकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अमन यादव।
और मौसम। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुधवार से राजधानी में पदयात्रा की शुरूआत करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में कल हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल मंगलवार को रात्रि 12 बजे से सुबह 11 बजे तक किया जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम ने इसको लेकर मार्ग परिवर्तन परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।